ओम शांति। हम बच्चों का सौभाग्य है कि हम उस धरती पर बैठे हैं जहां पर भगवान का अवतरण और कर्तव्य चला। समझते हैं सभी अपने आप को कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने तो जैसे ही पांडव भवन में एंटर किया तो मेरे ये विचार चलने शुरू हो गए कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं जो ऐसी धरती पर मेरे कदम पड़ रहे हैं जो इतनी पवित्र और महान भूमि है। अब ये सोचने की ही बात है। वैसे तो अज्ञानी लोग भी जब यहाँ आते हैं तो उनको तो ये बात नहीं मालूम है, लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं उनको ये बात अब समझ में आती है। तो इसलिए हम बच्चे जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम अपना सारा समय, अपने बोल, अपने वचन, अपने कर्म, अपने समय और अपनी शक्ति को सफल करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। हम ये भी देख रहे हैं दुनिया के अंदर जो टाइम चल रहा है वो बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंज, बहुत चुनौतियां हैं। भाई बहनों को बोलो आप वहां चलो, दीदी हम नहीं चल सकते, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, जैसे कई लोगों को, अभी हम लोग पांडव भवन की भट्टी में आए हुए ना ग्रुप लेकर के, तो एक भाई थे वो मुझे कहने लगे, कहते नहीं मेरी ऑफिस में बड़ी कमिटमेंट है, थोड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, मैं नहीं निकल सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा आप लक्ष्य रखो, आप हो कहाँ इस समय? कहते मैं लखनऊ से इस समय अहमदाबाद में हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अहमदाबाद से आप 2 दिन के लिए आ जाओ। तो कहते 8 तारीख को अगर मैं पहुंचू तो मुझे स्टे मिलेगा वहां पर? मैंने कहा वो प्रबंध मैं कर दूंगी। तो ठीक है, 8 तारीख को आ गए, स्टे अरेंजमेंट भी मिल गया, 9 तारीख भी हो गई, 10 भी हो गई। मैंने कहा आपको तो कहा, आपने तो कहा था कि मुझे 10 को जाना है। लेकिन कहते नहीं, अब ना सब एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कैसे एडजस्ट हो गया? मन ने एडजस्ट किया ना, प्रॉब्लम्स तो वही थी। तो हम जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसा वातावरण हम क्रिएट करते हैं उसी हिसाब से हमारी सोच चलती है। अगर हम वही वातावरण उस दुनिया में रहते हुए भी यही क्रिएट कर लें कि जो बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे तुम कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो बाबा ने हमें अलौकिक बातें सुनाई हैं, अगर उन बातों को हम ध्यान में रख लें तो मैं समझती हूँ कि हम लाइफ में हर जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, जो हम करना चाहते हैं वो हम जीवन में कर सकते हैं। जीवन में बहुत सीन्स सामने आते हैं लोगों के, किसी के सामने अच्छे सीन्स भी आते हैं, जब अच्छे सीन्स आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई हमें किसी काम के लिए अप्रिशिएट करता है, घर में कोई अच्छी बात होती है तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, यज्ञ में कुछ अच्छी बातें होती है, हमें कहीं बोलने का चांस मिलता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार थोड़ा सा उससे एक लेवल नीचे की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसमें भी हम बच्चे कुछ अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं कि कहीं हमें कहीं से सहयोग मिल गया, किसी ने कुछ हमें दे दिया। लेकिन कई बार कुछ एक सीन्स ऑफ लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर हम बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाते हैं और हमें लगता है कि कैसे करें, तो बड़ा मुश्किल है, इसमें तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन बाबा ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं अगर उनको हम सामने रखते हैं तो मैंने देखा कि हम जिंदगी में सदा सफल होते हैं। इसीलिए लोगों ने कहा है कि सक्सेस इज जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि सारे दिन भर की जर्नी के अंदर लड़ाई किया, झगड़ा किया, जो भी किया, लेकिन जिस जर्नी पर मुझे पहुंचना था, जो मेरा डेस्टिनेशन था, उस डेस्टिनेशन पर हम पहुंच गए, बस उसका हम ध्यान रखते हैं। अगर रेल में आए, मानो सारे टाइम हम लोग सेवा करते आए, सबसे आपस में बातचीत करते आए, और हमारा जो डेस्टिनेशन था उस डेस्टिनेशन पर बहुत आराम से अगर हम पहुंच गए और बहुत खुशी से पहुंचे, सेवा करके पहुंचे, तो हमें अंदर में बहुत हल्का फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से जो जीवन रूपी यात्रा है जो डेली हम करते हैं, सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक, इवन सोने में भी हम यात्रा करते हैं कि नहीं करते? सोने में भी हम लोग यात्रा करते रहते हैं, कहीं कहीं घूम आते हैं स्वप्नों के अंदर। तो बाबा ने हमेशा कहा कि अगर दिन तुम्हारा अच्छा है तो रात जब तुम सोओगे तो रात भी हमारी अच्छी होगी। इसलिए देखो पहले हमारा जो यज्ञ के अंदर रिकॉर्ड बजते थे, पहले 5 बजते थे, पहले कोई रिकॉर्ड नहीं बजता था, फिर 5 ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड बजने शुरू हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ, हर एक घंटे के बाद 2-2 लाइन का एक रिकॉर्ड बजता है, वो किस लिए कि हम अपने ऊपर अटेंशन रखें। लेकिन अब बाबा ने हम बच्चों को कह दिया कि बच्चे अब ऐसा टाइम आ गया है तो ऐसे समय पर तुम हरेक अपने बारे में खुद ही सोचो कि मुझे करना क्या है। जब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं कि अपनी प्रोग्रेस के लिए हमें खुद ही प्रोग्राम बनाने हैं, तो मैंने देखा कि हर व्यक्ति की, हर बाबा के बच्चे की जो नजर है वो अपनी तरफ आ जाती है। नहीं तो क्या होता है कि मोस्टली हम लोग ब्लेम मोड में रहते हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अब देखो किसी की अगर मानसिक स्थिति है, बार बार हिलती रहेगी, कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो वो व्यक्ति फिर स्टेबल नहीं रह सकता, नहीं होगा ना। छोटी सी बात आई तो उसमें इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, जैसे किसी का शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहे, किसी का बीपी बार बार नीचे ऊपर होता रहे, तो वो व्यक्ति फिर परेशान होता है, अब मैं क्या करूं, मेरा पसीना छूट रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, अब मेरे अंदर में ताकत आ गई है, अब मैं अगर कुछ कर लेता हूं तो फिर उसके बाद फिर तबीयत खराब हो जाती है। तो इसका मतलब अगर हमारी मानसिक स्थिति अनस्टेबल है तो हम लोग अपने जीवन के अंदर सफल नहीं हो सकते। इसलिए बाबा ने कहा है कि अगर तुम तन को भी अच्छा रखना चाहते हो, इवन रिसर्च स्टडी भी अभी कहती है कि अगर हम तन को भी अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, मन को भी अच्छा रखना है। कल शीलू बहन जी एक क्लास ले रहे थे तो उसमें एक एग्जांपल सुना रहे थे, कहते कि एक पेशेंट होता है वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे ही बोलता है ना डॉक्टर, चिंता मत करो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो फिर वो अल्टीमेटली डॉक्टर को कहता है कि मैं चिंता कैसे ना करूं, उसका मुझे गुरु बताओ। तो फिर डॉक्टर कहता है कि उसका गुरु तो मुझे भी नहीं पता कि चिंता तुम कैसे नहीं करो। तो चिंता हम कैसे ना करें ये हमें कौन सिखाता है, केवल बाबा ही सिखाता है। लेकिन पर फिर भी बाबा के बच्चे बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, बहन जी मुझे बड़ी फिक्र रहती है मैं क्या करूं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया है, हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए हैं, मेरे यहाँ पर कोरोना के टाइम में डेथ हो गई, अचानक कुछ एक्सीडेंटल केसेस ऐसे आ गए, अब हम करें क्या, कैसे हम एडजस्ट करें। तो जब ऐसी ऐसी बातें हम सबके सामने आने लगती हैं तो फिर हम बाबा के बच्चों की भी लैंग्वेज वही हो जाती है जो दुनिया वालों की होती है। तो दुनिया वाले देखते हैं कि जैसे हम लोग अब किसी परिस्थिति में बिहेव करते हैं इसी तरह से बाबा के बच्चे भी बिहेव कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए हमारा वो नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम बच्चों को कोई भी परिस्थिति को साक्षी होकर के देखना बहुत जरूरी है, खेल की तरह देखना। तभी बाबा ने कहा ये ड्रामा है, ड्रामा के हर सीन को खेल की तरह देखा जाता है ना। एक होता है इनसाइड आउट, एक होता है आउटसाइड इन। अब हम मोस्टली क्या करते हैं, बाबा के बनने के बावजूद भी आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया का वातावरण कैसा है, वहां लड़ाई चल रही है उसमें अब क्या हो रहा है, एक होता है न्यूज के लिए थोड़ा सा जानना, लेकिन एक होता है उसके बारे में पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज रखना जिसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है। तो ये बात हमें ये दर्शाती है कि मेरी बुद्धि ज्यादा किस तरफ जाती है, फालतू बातों की तरफ जाती है, और वो फालतू बातें मेरे जीवन में मुझको फिर परेशान करती है। उस समय तो जब हम सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी के बारे में, हो सकता है कि हम किसी और को भी बताएंगे ये इन्फॉर्मेशन ऐसे है, परंतु जब वो बाद में हम अपने आप को देखते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि वाकई में जो मेरी स्थिति है वो नीचे की तरफ ही जा रही है। इसलिए देखने में आता है कि जब हम बहुत पुराने होने लगते हैं ना ज्ञान में, तो हम क्लासेस भी मिस करना शुरू कर देते हैं, होता है ऐसा, क्लासेस भी मिस करना शुरू कर देते हैं, योग में भी अलबेले हो जाते हैं, सर्विस में भी बहने कहती हैं आने के लिए तो भी हम लोग क्या हो जाते हैं, ढीले, नहीं अब नहीं आ सकते, मुश्किल है, थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। कारण क्या होता है? यही कारण होता है। एक बार जानकी दादी जी के पास दो भाई गए। वो कहते हैं, दादी जी हमारी जो स्थिति है ना वो अब इतनी अच्छी नहीं रहती है, पहले बहुत अच्छी रहती थी। तो दादी को तो पता था रीजन क्या होता है मोस्टली, क्योंकि बहुत ज्यादा अनुभवी होती हैं बहनें। तो दादी ने उनको कहा कि आप लोग ना एक हफ्ता जब आपस में बैठो तो केवल ज्ञान की चर्चा करो और कोई बात आपस में नहीं करो, और फिर मेरे पास आना। तो एक हफ्ता पूरा हुआ, उसके बाद वो लोग दादी के पास आए। तो दादी ने पूछा कि अब आपकी स्थिति कैसी है? तो दादी, अब तो बहुत अच्छी है। कहते, पहले खराब क्यों थी, क्यों खराब थी? तो उन्होंने कहा, दादी जब हम पहले बैठते थे ना, हम एक दूसरे के बारे में बातें ज्यादा करते थे और ज्ञान के बारे में बातें कम करते थे। इसीलिए बाबा ने ब्राह्मणों को कहा है कि कभी भी जो आपने लोहे की जंजीरें छोड़ी है ना, उनको तोड़ करके अब आप जो है हीरे की जंजीरों में फंस जाते हो, ये हमें नहीं करना चाहिए। आपस में ग्रुपिज्म कर लेना, आपस में बैठना, आपस में बातें करना, हम कहेंगे नहीं, हमने तो ग्रुप इसलिए बनाया कि हम आपस में मिलकर अच्छी अच्छी बातें करेंगे। डेफिनेटली 2-4-10 दिन होती भी है, लेकिन उसके बाद तेरी बहू क्या करती है, मेरी क्या करती है, मेरे बच्चे कैसे जाते हैं, उसके यहाँ क्या होता है, तुम यज्ञ में क्या सेवा करती हो, अच्छा तुम पुरानी हो इतनी करती हो, मैं इतनी क्यों करूं? तो फिर हम दूसरे को भी क्या करने लगते हैं, पीछे खींचने लगते हैं। तो इसलिए ये सब बातें जो हमारे जीवन में आती हैं, जो हमारे उमंग उत्साह को सोडा वाटर कर देती हैं, इनसे हमेशा अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो पहली बात तो सदा ये याद रखो, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस ब्राह्मण लाइफ में इवन अगर हम लास्ट में भी आए हैं तो भी फास्ट जाएं, और फास्ट के बाद हम फर्स्ट नंबर में आ जाएं। कितने हम यज्ञ के अंदर भाई बहन देख रहे हैं लास्ट में आए हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं। कारण क्या है? कि उनका पढ़ाई पे ज्यादा अटेंशन है, पढ़ाई पे ज्यादा अटेंशन है, धारणाओं पे ज्यादा अटेंशन है, योग में ज्यादा अटेंशन है। इवन सेंटर्स पे भी ऐसे होता है, बहुत भाई इन पीछे आते हैं, लेकिन दीदी कोई सेवा बताओ, दीदी कोई सेवा बताओ, दीदी कोई सेवा बताओ कर करके वो इतनी दुआएं ले जाते हैं बहनों की कि उनकी सीट अपने आप ही आगे हो जाती है। तो इसलिए बाबा कभी भी किसी की सीट नहीं फिक्स करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि मैं सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ। मैं शुरू शुरू में जब बहुत छोटी थी तो मैं ये सोचा करती थी कि दीदी दादियों को ना कुछ बाबा स्पेशल कोचिंग देते होंगे, कुछ जरूर स्पेशल कोचिंग देते होंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो सब कुछ देखना और समझना शुरू किया, तो यही पाया कि पब्लिक के अंदर हम सबके बीच में ही बाबा दादी से भी बात करते हैं, दीदियों से भी बात करते हैं, हर एक से बात करते हैं, और उनको हर बात का सोल्यूशन वहीं दे रहे होते, क्योंकि फैमिली है। इससे भी पता लगता है कि एक फैमिली है, फैमिली में गुपचुप के तो बातें नहीं होती हैं बच्चों से। तो ये बात बहुत बड़ी है यज्ञ के अंदर कि बाबा ने कहा, बच्चे कभी भी अपने उमंग उत्साह को सोडा वाटर मत करो, वो कोई नहीं करता, वो हम खुद करते हैं जब हम लोग इधर उधर की बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। हमसे कोई पूछे आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, क्या होता है, सोचना पड़ता है, गहराई से सोचना पड़ता, क्या कहा था बाबा ने, क्या कहा था, हाँ फिर याद आएगा, नहीं कई बार रिपीट कराया था कि कन्याओं के लिए बाबा ने आज स्पेशली बोला तो एक पॉइंट याद आ जाएगी। तो उससे तो बात नहीं बनती ना, हम सब्जी मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो खाली हम आलू ही नहीं खरीद के लाते, लेकिन उसके साथ हरा धनिया भी लाते हैं, अदरक भी लाते हैं, हरी मिर्च भी लाते हैं, टमाटर भी लाते हैं, तभी जाके सब्जी बढ़िया बनेगी ना, आलू को कोई पानी में थोड़ी उबाल देंगे, नहीं ना। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सारा दिन भर में रुक रुक करके, रुक रुक करके एक घंटे में अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे थे, हम क्या कर रहे थे, कहाँ थी हमारी बुद्धि, फिर उसको समझा के मन को कि मन तू इधर उधर क्यों भागता है, क्या कारण है जो तू इतना इधर उधर चला जाता है। जब बार बार उसको समझाएंगे और थोड़ा सा अथॉरिटी यूज करेंगे कि बच्चे तुझे इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि संगम का समय है, हीरे तुल्य जीवन है। अगर तू सुमन बन जाएगा तो तू भी सुखी रहेगा और साथ साथ मैं भी एम्पावर्ड फील करूंगी। तो जब हम बार बार मन को समझाते हैं, किसी भी चीज को सीखने के लिए हर चीज एक कला होती है। कला वो कब बनती है? शुरू में हमें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे देखो, दुनिया में डांसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं। अगर मानो राम का भी एक्टर, राम किसी को बनाया जाता है और वो उसकी एक्टिंग करना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करता है? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, बार बार अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, मैं राम हूँ, मैं राम हूँ। तो मेरा जो बोल होना चाहिए वो धीरे धीरे होना चाहिए और बोल के अंदर मिठास और वरदान होना चाहिए। वो प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता? तो इसी तरह से जैसे देखो, ब्रह्मा बाबा को कितना नशा होता था। बच्चे में जाके मिचनू बनूंगा, बाबा छलांगे लगाते थे। एक बार तो बाबा कुएं में चले गए, जब पता लगा कि यहाँ कुआं खुदा, बाबा पानी आ गया, बाबा उसको देखने के लिए कुएं में चले गए। अब जब बाहर निकालना मुश्किल हुआ तो उसके बाद शिव बाबा ने उनके लिए मैसेज दिया कि इसको बोलो इतने नशे में भी ना रहे, मैं मिचनू, मैं छोटा बच्चा हूँ। तो नशा तो बाबा कहते होना चाहिए, लेकिन ओवर नशा भी खराब होता है। कई बार क्या होता है कि हम चलते हैं ज्ञान में, परिवारों में कई प्रकार की बातें पैदा कर लेते हैं। जैसे मानो हमें मालूम, ये बात मालूम है कि सपोज करो हमें अपने पति को चाय देनी होती है सुबह, है ना, और वही टाइम हमारा क्लास में आने का होता है। तो अब हम क्या करेंगे? कई बार कह देंगे नहीं, हम तो जा रहे हैं, हमारी तो क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है ना। तो उनको क्या लगता है? गुस्सा आता है, उनको नेग्लेक्टेड फील करते हैं कि इन्होंने मुझे इग्नोर किया, इन्होंने मुझे नेग्लेक्ट किया। लेकिन अब क्या करते हैं? हम क्या करेंगे फिर? हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। हम लोग क्या करें? ठीक है फिर हम नहीं जाते, घर में झगड़ा होता है। झगड़े तो बाबा भी जब जीवन में समर्पित हुआ यज्ञ के अंदर तो भी बहुत झगड़े हुए, लेकिन बाबा ने हर उल्टी बात को कैसे लिया? सुलटे तरीके से लिया। अब इसी बात को, अगर मुझे पति के लिए चाय बना के निकलना है तो हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्यार से कि सुनो मुझे, मैं थोड़ी देर के लिए मैं सत्संग में जाती हूँ, आश्रम मत बोलो, उनको चिढ़ होती है, तो उनको बोलो थोड़े टाइम मैं सत्संग में जाती हूँ या जाता हूँ, तो थोड़ी मेरे मन को शांति मिलती है और घर को हम अच्छी तरह से चला पाते हैं। अगर आप कहो तो आपकी चाय मैं थर्मस में बना के रख जाऊं, हो सकता फिर भी उसमें ईगो हो, अहंकार वश कहेंगे क्यों मेरे को नहीं पीनी थर्मस की चाय। दो चार दिन कहना अच्छा ठीक है मैं नहीं जाती, फिर हम नहीं जाते। फिर वो खुद ही कहेंगे पांचवें दिन आपको कि सुनो तुम चले जाया करो, या मैं अपने आप बना लूंगा या फिर थर्मस में रख जाया करो। तो कहने का भाव ये है कि हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। हम लोग मोस्टली बीकेस पुराने होने के बावजूद भी क्लास करके मुरली में सबके सब कुछ सुन के चलेंगे। बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम सर्विस करो, सेंटर पर सहयोग दो, लेकिन जैसे ही सहयोग के लिए कहा जाएगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं कि टाइम नहीं है, मुझे तो जाना है। मैं कितनी बार देखती हूँ कि क्लास में अगर 8 के 8:30 बज जाए तो बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई सेवा किया, कोई और बात बता दी, तो हम लोग क्या होते हैं, अपने नंबर बनाने के बजाय हम लोग अपनी नेगेटिव मार्किंग करना शुरू कर देते हैं। ये बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, बातें बहुत छोटी छोटी हैं, और कई बार हम पुराने होते हैं तो पुरानों को देख करके फिर नयों को भी वही आदत पड़ जाती है। जब पुराने नहीं करते तो हम क्यों करें? कोई जरूर कोई कारण होगा कि सेवा में आनंद नहीं आता होगा, या कोई और बात होगी कि हम ये सोचते हैं कि हमने तो बहुत कर ली। ठीक है बहुत कर ली, लेकिन अब जो अकाउंट है उसको हमें कम तो नहीं करना ना, उसको हमें क्या करना है, हमें और ज्यादा बढ़ाना है। कई बार हम बच्चों को ये भी नशा चढ़ जाता है कि हमने तो बहुत कर लिया। बहुत पुराने भाई बहन कहने लगते हैं कि हमने तो बहुत कर लिया, इसलिए क्लास में भी आना छोड़ देते हैं और घर में बैठ के मुरली को पढ़ना और सुनना शुरू कर देते हैं। पर बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, अगर हम उस पर चलकर और हर सीन को साक्षी होकर के देखते हैं कि जो बाबा ने जिस समय के लिए जैसे राय दी है उसी दृष्टिकोण से हर सीन को देखना, तो उस दृष्टिकोण से हर सीन को देखने से हमने देखा जीवन में बहुत फायदा होता है।
देखो ब्रह्मा बाबा के सामने शुरू शुरू में जब बाबा चले तो अखबारों के अंदर कितनी बातें छपवा दी कि ब्रह्मा तो जो है वैश्याव्रति करता है। अब कहां वो ब्रह्मा बाबा जिनका जीवन इतना सादा, इतना उच्च विचार, जिन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन सेवा अर्थ लगा दिया। अगर हमें कोई ऐसा कह दे तो हम क्या करेंगे कि छोड़ो परे हम नहीं जाते, इतने लांछन कौन सहन कर सकता है। नहीं, लेकिन बाबा ने किए ना, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें भी किसके समान बनना है। बाप समान बनना क्या कि जो मेरे बाबा ने किया वैसा ही मेरे को करके और बन करके चलना है। यज्ञ के अंदर ऐसा टाइम आ गया जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, बैगरी पार्ट चला और कितने वत्स यज्ञ वत्स बाबा के पास थे। जब आकर भंडारण ने पूछा कि बाबा अब क्या करना है, तो बाबा ने उस समय भी क्या बोला कि बच्चे जिस टाइम तुम घंटी बजाती हो उसी समय तुम घंटी को बजा दो। और उसी समय क्या हुआ, कहीं से मनी ऑर्डर आ गया और मनी ऑर्डर आया और उस मनी ऑर्डर से क्या हुआ, फिर भोजन उसी समय पे तैयार। हम लोग क्या करते हैं, पुराने होने के बावजूद भी हम लोग अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाते। अगर हमारे सामने वो परिस्थिति आ जाती तो हम लोग क्या करते हम लोग घबरा जाते, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, दो चारों में चूचा करने लग जाते, फिर वो और दो चारों में करने लग जाते। हमेशा हम अपनी स्थिति को स्टेबल रखें, स्थिर रखें कि बाबा ने इस परिस्थिति को पार करने के लिए क्या बोला है। तो जब हम इस तरह से सोच करके चलते हैं तो हमारी बुद्धि अलौकिक और दिव्य बनती है, असद बुद्धि बनती है। क्योंकि हम लोग यहाँ ज्ञान जो लेते हैं सारा टाइम रोज, ये सिर्फ अपनी बुद्धि को क्या बनाने के लिए, सद्बुद्धि बनाने के लिए लेते हैं। और जितनी हमारी सद्बुद्धि होती चली जाती है तो उतना ही हम लोगों के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते चले जाते हैं। तो इसलिए हम बच्चों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि कैसी भी कोई बात हो, कैसी भी कोई परिस्थिति हो, लेकिन उस समय भी मुझे साक्षी होकर के रहना है। एक बार की मैं बात बताती हूँ कि मैं MSc में पढ़ रही थी तो उन दिनों हमारे यहाँ पर एक मेला हुआ बहुत बड़ा, तो बड़ी दीदी का फोन आया कि भई आप ना वहां पर आ जाओ, थोड़े हमें हैंड्स की जरूरत है, बहुत पुरानी बात है ऐसा नेटिव की। तो मैंने कहा, दोनों बातें थी सामने, अगले दिन मेरा पेपर था और आपको पता है MSc फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 25-25-30 पेजेस की का एक एक्सपेरिमेंट होता था। तो एक तरफ तो फाइनल पेपर है और दूसरी तरफ सेवा है, तो मैंने दोनों को वजन किया कि कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे लगा कि बाबा की सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा वहां बहुत जरूरत है तो इसलिए मैं तो सेवा में जाती हूँ और बाप संभालना सब चीज को। तो मैं निकल गई सेवा में, सोचा था थोड़ा करके जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन हुआ क्या कि वहां करते करते काफी लेट हो गए। अब लेट हो गए तो रात को भी आप कितना जागोगे, 10-11 बज गए और फिर सवेरे उठ के जाना भी है, 7 बजे निकलते थे यूनिवर्सिटी के लिए, तो अब जाना भी है तो कैसे करें। अब मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा मेरे 20 एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स तो रात भर में रिवाइज नहीं कर सकती, अब आपकी सेवा पे मैं गई थी और अब आप मुझे कुछ सजेस्ट करो। तो मेरे को दो एक्सपेरिमेंट जैसे टच होते हैं कि बच्चे तुम ये करके चले जाओ, तो मैं उनको बहुत अच्छे से थॉरो कर लेती हूँ और बाकियों को मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। तो क्या होता है कि आपको जब एक्सपेरिमेंट लेना होता था तो लॉटरी सिस्टम होता था, फाइल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स लिखे रहते थे। तो मैं खड़ी थी, मेरा नंबर आया, एक्सटर्नल भी थे इंटरनल भी थे, तो अब खड़ी थी मैं बाबा की याद में खड़ी हो गई और मैंने ऐसे एक फाइल पिक की, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, वही जो मैं चाहती थी। तो मुझे इतना थैंक्स निकला कि मैंने कहा साक्षी होके अगर मैंने डिसीजन लिया तो कितना अच्छा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने मोस्टली भाई बहनों की 99% की हैबिट होती है कि कोई अगर हमें थोड़ी सी भी कोई सेवा बता दे, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं, हम जा रहे हैं, कर सकते हैं और बाहर कोई मिल जाएगा उससे 10 मिनट बात कर लेंगे। तो हमने क्या बदला अपने आप को, घर में कोई आ जाएगा हम उसको इतना टाइम दे देंगे बात मत पूछो, और अगर सेंटर पे बहन कह दे कि तुम्हें थोड़ी सी सेवा में मदद करनी है तो उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमेशा बाबा को कहो अपने दिल की बात कि बाबा मेरा मन होता है ये काम करने का, बाबा मेरा मन करता है सेवा में जाने का, लेकिन मैं कैसे एडजस्ट करूं, ये सोल्यूशन पूछो बाबा से। तो अगर प्रॉब्लम को सोल्यूशन में हम बदल लेते हैं तो विनर हो जाते हैं। होता क्या है, क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन होता है छोटा सा, एक लाइन का, दो लाइन का, उसका उत्तर कितना बड़ा होता है, 10 पेज का भी हो जाता है कई बार एक क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो इसलिए हमेशा हमें क्या करना है कि हमेशा क्वेश्चन मार्क को हमें, क्वेश्चन को हमेशा हल करना है, हमेशा क्वेश्चन को हल करना है। जगदीश भाई हमेशा यही सिखाया करते थे कि हमेशा क्वेश्चंस को आप हल करो, हमेशा क्वेश्चंस को हल करो। कभी भी आप ये नहीं बोलो हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। बाबा के बच्चों की डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल शब्द नहीं होना चाहिए। ओम शांति रिट्रीट सेंटर आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में है, उसकी एक बार लैंड प्रोजेक्ट को करने की बात आई थी तो करुणा भाई जी मधुबन से दिल्ली में आए हुए थे और हमारे पास सेंटर पे थे वो। तो कहने लगे आजकल ना मधुबन में एक बात चल रही है कि दिल्ली में एक बड़ा स्थान बनाया जाए क्योंकि सब लोग माउंट आबू नहीं आ पाते हैं समय की वजह से, तो दिल्ली बीइंग कैपिटल एक बड़ा स्थान दिल्ली में होना चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने बात मेरे से जिक्र की तो मेरे मन में आया कि ठीक है मैं इस काम को उठती हूँ, इस सेवा को। फिर मन में आया कि ना कर पाई तो फिर मैं बाबा के पास गई, मैंने कहा बाबा ये सेवा, इस सेवा को मैं करना चाहती हूँ। अब जमीन भी छोटी नहीं थी, बात जब चली थी तो 200 एकड़ जमीन से चली थी, आप समझते हैं 200 एकड़ जमीन कितनी होती है, ठीक है ना। तो खेल खेल में ले लिया कि भाई ठीक है इसको करना है, पर मैंने बाबा को कहा बाबा देखो ना पीछे हटना और ना मैं पीछे हटूंगी, मैं आप नहला तो मैं दहला रहूंगी, लेकिन आपको मदद पूरी करनी होगी मेरी। तो जैसे ही बाबा को मैंने वो दिया और बाबा को कहे कि आप बिलीव करेंगे, उन दिनों तो मैं बैंक में जॉब भी करती थी और सेंटर भी नया नया बना था, उस समय बड़ा चैलेंजिंग था ओआरसी के लिए जमीन ढूंढना जो आजकल ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन फिर भी मन में ये था कि ये करना है, तो सुबह से लेकर रात तक चक्की की तरह की रात को आके भूखा तक सो जाती थी मैं जमीनों को देखने के लिए, और करीबन 100 जमीनें देखी होंगे उन दिनों, 1.5 साल ये प्रोजेक्ट चला था। तो पूरा कारवा निकलता था यज्ञ के भाई बहनों का, जिसमें निर्वैर भाई जी, रमेश भाई जी और अपने सारे गुलसार दादी जी, दिल्ली के सारे बड़े भाई बहन, पूरा कारवा जैसे ही वो कोई जमीन देखने को निकलते वो उस जमीन को कोई डीलर परचेज कर लेता था टोकन मनी देके, और फिर फोन आता था कि ये जमीन हमारे पास है, आपको ये जमीन चाहिए तो हमसे ले लेना। फिर हम कहते थे आप इसको रखो, हमें अब ये जमीन नहीं चाहिए। तो मतलब बहुत तरह की बातें आई। एक बार एक फ्रॉड केस आया, क्या हुआ कि अपनी मोहिनी दीदी का, प्रकाश मणि दादी जी के साथ जो थे ना, उनका फोन आया कि आप जो है ना, मैंने लिख के भेजा कि एक जमीन है तो वो 1 रूपी एकड़ इज इक्वलन टू 1 लाख, तो उसको वो 1 रूपी लिखते हैं जो इनकी प्रॉपर्टी डीलर्स की जो वो होती है ना लिखने के तरीके। तो मैंने वो ड्राइंग यहाँ भेज दी, मैंने कहा ये इस तरह से जमीन है, ये ड्राइंग है, उसके नीचे लिखा हुआ था 1 लाख इक्वलन टू 1 रूपी। तो 1 रूपी के हिसाब से अब दादियां दीदियां तो भोली भोली हैं, तो उन्होंने समझा कि अरे तो बहुत सस्ती जमीन है, और मेरे से कुछ नहीं पूछा। और वो लोग चेन्नई में थे, प्रकाशमणि दादी जी और साथ में मोहिनी बहन। तो सर्दियों के जनवरी मास था उन दिनों, तो अचानक रात के 9:30 बजे फोन आता है कि कल सुबह हम आपके पास पहुंच रहे हैं जमीन देखने के लिए। तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको यहाँ के पता लगेगा कि तो 1 लाख रुपए पर एकड़ है तो वो तो फिर बड़े ही अजीब सा लगेगा। खैर नहीं आओ, अब इतनी लेट हो चुकी थी मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो पांडव भवन में आए हम लोग भी, वहां पहुंचे तो जिससे मेरी बात चल रही थी वो बाय चांस उन दिनों वहां मौजूद नहीं था, दूसरा उसका जो पार्टनर था वो वहां पे मौजूद था। तो उसने अपने पार्टनर को बोला कि इस तरह से ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन की हेड आ रही है, आप उनको वो जमीन दिखा देना। तो वो क्या होता, थे तो बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। तो उसको लगा मैं क्यों ना डील कर लूं। तो उसके मन में बेईमाना आ गया, उसने जमीन तो दिखा दी। दिखाने के बाद में फिर उसने मेरे को फोन किया कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, आशाराम बापू का चेला बोल रहा हूँ, और मैंने ही जमीन आशाराम बापू को भी दिलाई थी। आप जिससे जमीन की बात कर रहे हैं ना, आप उनसे जमीन की बात ना करके आप मेरे से डील करो, मैं आपको बहुत अच्छी और बढ़िया जमीन दिलाऊंगा। पर मेरी जो बुद्धि थी, बाबा ने इतनी सालिम दी है कि मैं बहुत लोगों के वाइब्रेशंस को कैच कर लेती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा बोल कौन रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ। तो वो सहम गया बेचारा। तो फिर मैंने कहा आप मुझे समझाना क्या चाह रहे हो। मैंने कहा मैं आपको समझ गई हूँ, आप वही बोल रहे हो जिसने सवेरे जमीने दिखाई थी। मैंने कहा हमें जमीन से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो जमीन उससे ले या तुमसे दे। आप सस्ती जमीन दे दो, बढ़िया जमीन दे दो, हम आपसे ले लेंगे जमीन। तो मतलब ऐसे ऐसे फ्रॉड केसेस कितने आए, लेकिन अगर बाबा के कार्य को हम ये ओट लेते हैं कि बाबा हमें करना ही है, बाबा ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यही बात हमें समझाई है कि दृढ़ता के अंदर भी क्या होनी चाहिए, दृढ़ता। देखो जिनके अंदर दृढ़ता में भी दृढ़ता थी तो वो यहाँ पहुंच गए, भट्टी के अंदर पहुंच जाते हैं, मधुबन में पहुंच जाते हैं, बाबा के सीजन में पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत भाई बहनों की टिकटें बुक हुई, उनका मन ढीला होता है, पता नहीं घर से निकल पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उनका क्या होता है कि बनी बनाई टिकटें भी उनकी रखी रह जाती हैं। इसलिए बाबा के कार्य में हम लोग जो सफलता पाते हैं वो हमेशा निश्चय के आधार से सफल होते हैं, हमेशा निश्चय के आधार से। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनय, इतना भी संशय नहीं आए। और अगर कोई मन में बात आती है, देखो हम लोगों की सबकी स्टूडेंट लाइफ है, एंड दैट टू गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, ऐसी स्टडी है हमारी जिसमें हमारी सटल बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, तो बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। तो उस समय भी अगर हमारे मन में कोई संशय उठता है तो उसको इमीडिएट टीचर से क्लियर करना चाहिए। मोस्टली मैंने देखा कि हम लोग आपस में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो जो फैमिली में रहते हैं उनका एक लेवल और सेंटर पे रहने वालों का लेवल, एनर्जी लेवल फर्क होता है या नहीं होता। एक तो है जो समर्पित बुद्धि है, जो बाबा के प्रति पूरा डेडिकेटेड है, तो वो हमें हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। ये इसी तरह से हो जाता है कि एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट से बात करेगा तो उसको वो कोई बातें तो उसको समझा देगा, दिखा देगा, बता देगा, लेकिन कुछ गुर जो है वो अपने पास रख लेगा। लेकिन टीचर हमेशा क्या करेगा, अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को वो ये चाहेगा कि मैं इसको अपने से भी ऊंचा बना दूं। तो कई बार हम लोगों के अंदर कोई भी संशय आता है किसी भी बात के ऊपर, बाबा ने कहा बच्चा ये फैमिली है, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं सेंटर पर किसी को डिस्टर्ब क्यों करें, हम आपस में एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं। तो वो फिर अपने हिसाब से बात को समझाते हैं। हमने कहा कि देखो हम लोग नहीं जा सकते, थोड़ा मुश्किल होता। हाँ बड़ा मुश्किल है, मेरे साथ भी आजकल ऐसे ही चल, उसने और दो बात ऐड कर दी। तो हमें अगर अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट लेने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे ना। मुझे पता मुझे है बीमारी और मुझे इस बीमारी को ट्रीट करना है। तो इसलिए बाबा के बनने के बाद भी हम बच्चे कई बार इधर उधर राह भटक जाते हैं। बाबा ने कहा C1, किसी को मत देखो, भाई बहनों को भी नहीं देखो। आजकल हम कितनी खबरें सुनते हैं, आजकल YouTube आ गया, WhatsApp आ गया, हजारों खबरें एक सेकंड के अंदर ऑल ओवर दी वर्ल्ड वायरल हो जाती हैं। तो संकल्प चलते हैं, बाबा ने कहा सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि राइट बात क्या है, दैट्स ऑल। बाकी डिटेल जानने की हमको, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना, हमारा कोर्स है बहुत लंबा, अभी हमारा लिबरेशन कोर्स चल रहा है, कोर्स हमारा बहुत लंबा है। इस लंबे कोर्स के अंदर अगर हम लोग ढीले होके चलते रहेंगे तो फिर हमारा समय पे कोर्स पूरा नहीं होगा, और नहीं होगा समय पे कोर्स पूरा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, मुश्किल हो जाएगी ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हमें समय पर अपने टारगेट पे पहुंचना है। ना कि हम बनने तो चले हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान और पाले हम कोई भी पोस्ट, भाई ठीक है बाबा के तो बन गए ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी उमंग उत्साह अगर हमारा सोडा वाटर होता है तो इसका मतलब हम ये समझ लें कि हमें इधर उधर की चर्चा और बातें सुनने की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है, उससे हमें अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। गुलजार दादी जी कई बार सुनाते थे, जैसे पालक होता है ना, तो पालक के अंदर भी कीड़ा कैसा होगा, हरा है तो हरे ही रंग का कीड़ा होता, दिखता नहीं है ना, सब्जियों में यही होता है ना कीड़ा, सफेद वो है फल तो उसके अंदर उसी टाइप का कीड़ा होगा जो दिखाई नहीं देता है बिल्कुल। तो इसी तरह से है, हम समझते हैं लाइक माइंडेड है, बहुत अच्छे हैं, अच्छी बातें करेंगे बैठ के, लेकिन बाबा ने कहा संगम पर तुम्हारा कोई भी साथी नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? बाबा। बाबा आप साथ हैं, जैसे मैं इस बार आ रही थी, ट्रेन में आ रही थी, तो जिस बहन के साथ मेरा रिजर्वेशन था, बाई चांस उनको कोई काम पड़ा तो उसने टिकट कैंसिल कराई, तो मुझे एक संकल्प आया कि मैं अकेली हूँ कमरे उसमें कंपार्टमेंट में, तो कोई साथ हो तो फिर सेकंड टाइम मैंने थॉट क्रिएट किया, मैंने कहा बाबा साथ है ना, बाबा है बाबा मदद करेंगे। तो मैंने देखा कि बाद में पता लगा कि हमारे ग्रुप से 3-4 लोग ही उसी डिब्बे में ट्रेवल कर रहे हैं, और वो कब पता लगा? जब हम लोग कंपार्टमेंट में बैठ गए। तो कहने का भाव यह है कि कोई भी बात होती बाबा को कहो। कई बार हमने देखा सेवा के फील्ड में भाई बहन नहीं आ पाते, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है और बिजी होते हैं, शेड्यूल ऐसा होता है, बच्चों के साथ भी डील करना होता है। तो मैंने देखा कि कभी मैं सेवा को नहीं पीछे करती, जो करना है वो करना है, चाहे कोई है या नहीं है, लेकिन मैंने देखा मैं बाबा को कहती हूँ कि बाबा ये सेवा है, अब आपको इसमें मदद करनी है। तो मैंने देखा कि कई बार बाबा किसी और सेंटर के भाई बहनों को भी सेंटर पे भेज देता। एक बार ऐसे ही हुआ, मैंने कहा बाबा अब कैसे करूं, मैं कई प्रकार की सेवाएं हैं, सब लोग और फील्ड में गए हुए थे, तो मैंने देखा कि एक भाई आया, उसने घंटी बजाई दोपहर के टाइम में, और वो कहने लगा कि दीदी मैं फला फला सेंटर से आया हूँ, मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं दीदी से मिल लूंगा, सेंटर भी देख लूंगा। तो थोड़ी बात बात होती रही, चाय पानी पिया, तो उसके बाद दीदी कोई सेवा हो तो बता दो, मेरे पास टाइम बहुत है। हमेशा डिग्निटी से जियो, हमेशा डिग्निटी से जियो। कोई भी बात मन में आती, देखो हजारों तरह की बातें मन में आएंगी, तन के बारे में भी आएंगी, मन के बारे में भी आएंगी, धन के बारे में भी आएंगी, लेकिन उसी समय बात को डाइवर्ट कर दो, लौकिक को अलौकिक में हम परिवर्तित कर दें। अगर हम उसी समय किसी भी बात को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत ऊंचा हो जाता है, हमारा जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। नहीं तो हम अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, खराब कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि अरे पता नहीं क्या है, ज्ञान में तो जाते हैं, मुरली सुनते हैं, मुरली भी बुद्धि में नहीं बैठती है, धारणाएं भी नहीं होती हैं, तो इसलिए फिर आना छोड़ देते, भाई क्यों आना छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, पहले तो तुम ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कि बात मत पूछो है। तो समझ से चलना चाहिए, हमेशा ज्ञान में बैलेंस रख करके, फैमिली वालों को भी साथ लेकर के चलें, पर इस तरह से साथ लें जैसे कहावत है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से बाबा ने बच्चों को क्या सिखाया था, जब बंधेलियां बिचारियां इतनी मार खाती थी, इतनी मार खाती थी, बाबा ने कहा प्योरिटी को तुम्हें कभी नहीं छोड़ना है, धारणाओं को तुम्हें नहीं छोड़ना है, आप उनको बोलो कि हम आपका थूकदान भी बनेंगे, पीठदान भी बनेंगे, सब बातें आपकी मानेंगे, लेकिन इस बात पर हम एग्री नहीं करेंगे। क्या होता है, अल्टीमेटली वो मान जाते हैं ना। मेरे साथ एक कपल आया हुआ, एक बहन थी, बेचारी इतना कहती थी कि दीदी मेरे पति कभी नहीं बदल सकते। मैंने कहा तुम ये बोलना छोड़ दो कि ये जरूर बदलेंगे, ये भी बाबा के बच्चे हैं। ठीक है, साथी सहयोगी ना बने, योगी ना बने, सहयोगी जरूर बनेंगे, अंत में तो सभी को मानना है। तो उस बहन ने बहुत अच्छे से पुरुषार्थ किया और इतनी सेवा करती है कि मैं बता नहीं सकती। अल्टीमेटली उस भाई में ऐसा परिवर्तन आया उनके पति के अंदर, उनकी धारणाओं को देख करके, उनके उमंग उत्साह को देख करके, कि वो अब कहती है कि मेरे जो पति हैं मेरे से आगे हैं। कैसे विनर बनी, अपनी धारणाओं के बल पर। कई बार हम अपनी धारणाओं को लूज कर लेते हैं, कहीं लगा हमें गुस्सा आ रहा, थोड़ा चुप हो जाओ, मुंह फेर लो, थोड़ा इग्नोर कर दो बात को, शांत हो जाओ कि अभी नहीं, थोड़ी देर में कहेंगे, बाबा ने इस बात को हैंडल करने का क्या तरीका बताया। क्योंकि जब कोई भी रेजिस्टेंस वाली बात सामने आती है तो उसका असर सीधा हमारी इमोशनल हेल्थ पे होता है, और जहां हमारी इमोशनल हेल्थ डाउन होने शुरू हो जाती है वहां पर फिर हम बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए तन को भी चलाने का, धन को भी चलाने का, समय शक्ति को भी चलाने का, सबको चलाने का जो तरीका वो क्या है, मन है। इसलिए मन को हमें बहुत अटेंटिव हो करके उसकी पालना बहुत अच्छी करनी है। और ये हमारा इकलौता बच्चा है, माँ का इकलौता बच्चा होता है, उसको अनमोल नाम देती है वो, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, भगवान ने मुझे एक गिफ्ट करके दिया है। तो इसी तरह से ये संगम पर मेरा मन जो है वो क्या है, अनमोल है। जो मुझे गिफ्ट में बाबा ने बताया कि बच्चे ये तुम्हारा बेबी है, यही बताया ना बाबा ने कि मन हमारा बेबी है और हम इसके मालिक हैं। तो जब हम अपने बेबी को बार बार, अगर वो खराब हो गया, कुरूप हो गया, तो बाबा भी तो हमारा सहन करता है कि नहीं करता। हमारे अंदर में कितनी बुराइयां हैं सबके अंदर, बाबा उन सब बुराइयों को देखकर सहन करते हुए भी हमें हमेशा क्या कहता है, मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे। बाबा इवन देखते रहे होते, सबकी पता होता है, बाबा कहते भी हैं कितनी बार कि मुझे बच्चों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सारी बातें मालूम है, लेकिन फिर भी बाबा उनके किसको देखते हैं, विशेषता को देखते हैं। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा हमें विशेषता का चश्मा पहन करके रखना है। जब हम किसी की विशेषता देखना शुरू कर देते हैं ना, कई बार क्या होता है कि जब इक्वल एज ग्रुप के लोग आते हैं और हम लोग सेवा के मैदान में आते हैं, तो वहां में हमारे एक कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी, ये सब चीजें वहां पैदा होती हैं। जब ऐसे लेवल्स पे काम कर रहे हो तो नहीं होगी, लेकिन जब हम सेम लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो वहां ज्यादा कंपैरिजन, कंपटीशन आता है। तो वहां हमें अपने आप को बचा के रखना बहुत जरूरी है। उस समय हम सोचें कि बाबा ने इस समय के लिए क्या बात बोली है, इससे हमारी मुरली भी रिविजन होती है। जहां हमारी मुरली रिविजन छोड़ना शुरू हो जाती है तो वहां पर हमारी बुद्धि भी ऑटोमेटिकली सालिम बनना शुरू हो जाती, स्ट्रांग बनना शुरू हो जाती है। और अभी तो देखो टाइम ऐसा आ रहा है कि बात मत पूछो, एक से एक बढ़ के चैलेंज हमारे सामने आएगा। धन हमारा सहयोगी नहीं बनेगा, बच्चे हमारे सहयोगी नहीं बनेंगे, तन भी हमारा सहयोगी नहीं बनेगा, लेकिन अगर मन उस समय में हमारा सहयोगी हुआ तो हमारी नैया, मन और बुद्धि जो दो बच्चे हैं, अगर ये हमारे सहयोगी हुए तो हमें राइट बात टच होगी। बाबा ने कितनी बार कहा है कि बच्चे कुछ भी दुनिया में विनाश हो रहा होगा तुम्हें टच करेगा, जिनकी बुद्धि सालिम होगी वो या तो असलम स्थान पे पहुंच जाएगा। बाबा ने बोला है ना कि जितने भी रिट्रीट सेंटर्स हैं ये सब क्या है, ये सब हमारे असलम स्थान है, तुम्हें टच होगा तुम सीधा मधुबन वाली गाड़ी चलेगी और तुम उसमें बैठ के आ जाओगे। एक बार 2000 में ऐसे हुआ था ना, लेकिन मैंने देखा बच्चे हिल गए, उस समय हिल गए, कईयों का यहाँ मधुबन आने का प्रोग्राम था, शायद बाबा का ही टर्न था उस टाइम, तो बच्चे हिल गए, अरे इतनी बार तो मिले, जरूरी थोड़ी है इस बार भी जाना है, कुछ हो गया तो रास्ते में, है ना। जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनके सामने बातें आती हैं, लेकिन वो पानी पे लकीर की तरह बन जाती हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, हम पत्थर की लकीर बना देते हैं बातों को, और मन को मण बना देते हैं, 40 शेर का बना देते हैं, इतना भारी कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, कुछ दिख ही नहीं रहा ना नजारा सामने। बाबा के सामने क्या दिखता था, दिखता था बाबा को कुछ, बाबा के पास तो जो संपत्ति थी वो भी उन्होंने माताओं के, बहनों के आगे समर्पित कर दी थी ना, लेकिन हमें तो बाबा इतना तो समर्पण होने के लिए नहीं कहता ना, वो तो बाबा हमें कहता बस हाँ जी का पाठ, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जितना हम जी हाँ करते चलते हैं उतना ऑटोमेटिकली हमें दूसरों की दुआएं प्राप्त हो जाती हैं। कई बार मैंने देखा कई भाई बहने छोटी छोटी सेवाएं करके ना अपना बड़ा पुण्य कमा लेते हैं, और कई भाई बहन जो होंगे टाइम होते हुए भी भाग्य बनाने के नहीं सोचते कि ये भाग्य बनाने की वेला है, कोई आया है पकड़ के उसको समझा दो ज्ञान, सब्जी लेने गए हो वहाँ किसी को पकड़ लो, मदर डेयरी पे हो आप वहाँ किसी को ज्ञान पकड़ा दो। थोड़ा सा ज्ञान के जो हीरे हैं अगर हम दान करना शुरू करते हैं तो इससे हमारी बुद्धि भी कैसी बनती है, अच्छी बनती है। तो इसलिए इन बातों पे ध्यान रखें कि कभी भी उमंग उत्साह सोडा वाटर होने ना दे। उसके लिए हम लोग क्या करें, कभी भी इधर उधर किसी के साथ ना बैठे। मेरा फ्रेंड एक शिव बाबा है, आपसी कंपनी ज्यादा नहीं, ठीक है। बाबा ने ब्राह्मण परिवार बनाया है, आपस में मिलो जुलो बैठो करो ये सब हम करें, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा इंटीमेसी में एक दूसरे के साथ नहीं आए, क्योंकि हमारी वहां उन्नति नहीं होगी ये पक्का है। वहां धीरे धीरे हमारे में गिरावट आती है, फिर हम बहनों से बातें छुपाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं आप वहां नहीं बताना, वहां नहीं बताना। एक बार मुझे किसी ने बताया कि पांडव भवन में भट्टी करने के लिए भाई बहने आए थे, तो वहां के कुछ लोगों ने मिलकर बनाते तो शुभ भावना से हैं कि हम आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और आपस में बैठ के मिला करेंगे और आपस में बैठ के क्या करेंगे, चिट चैट किया करेंगे, भट्टियां किया करेंगे। कुछ नहीं होता, क्या करेंगे थोड़े दिन के बाद, 10 दिन के बाद, तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा क्या बिजनेस है। क्यों? क्योंकि हम कसूर नहीं है हमारा, हमारे संस्कार पड़े हुए हैं ना, इतने पिछले जन्मों के संस्कार हैं तो वो निकल आते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम किनारा करके चलो, बहुत ज्यादा अपने आप को संग दोष से हमको बचाना है। फिर इसी तरह से दूसरी बात कौन सी आई कि अपनी प्रोग्रेस के लिए हमें अपने लिए खुद ही प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हरेक की अपनी वीकनेस है, हरेक की अपनी वीकनेस है, आपकी अपनी वीकनेस है, मेरी अपनी वीकनेस है। तो काम मुझे किस पे करना पड़ेगा, हो सकता मेरा सेवा का सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, योग का सब्जेक्ट मेरा कमजोर हो, अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट मेरा कमजोर हो, लेकिन तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को मुझे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तो मुझे खुद ही बैठ करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इस पर भी हमको पूरा पूरा ध्यान देना है। तो अगर इन कुछ एक बातों पे हम लोग अगर लाइफ में ध्यान देंगे तो मैं समझती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। बाकी लौकिक नाम उर्मिल बहन है, दिल्ली पालम विहार से हूँ और पालम विहार सेवा केंद्र गुड़गांव में आता है और बहुत अच्छा एरिया है, तो सर्विसेज करके बहुत अच्छा लगता है। यज्ञ में काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, तो डॉक्टर एमडी गुप्ता फैमिली को शायद काफी लोग जानते होंगे, डॉक्टर मोहित को जानते होंगे, काफी क्लासेस सुनते होंगे उनके। तो ये पूरा परिवार ही पहली बार जब यज्ञ में आया था, सन 80s में आए थे, तो बहुत मेहनत की थी इनके ऊपर, 18 साल इस परिवार के ऊपर हमने मेहनत की थी। उसके बाद फिर ये लोग आए थे, तो उस दिन से वो लोग इतना अच्छा पूरा ज्ञान में चल रहे हैं और बाबा के यज्ञ में बहुत अच्छी सेवा चारों मिल करके करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और फिर उन्होंने ही बाबा का घर भी बना के दिया सबने मिल करके, तो लगता है कि हर परिवार में ही अगर ऐसे होने लग जाए, पर दृढ़ता से चलना पड़ता है, दृढ़ता से कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैंने प्रतिज्ञा की हुई थी धरती फट जाए लेकिन उसमें समा जाऊंगी, लेकिन ये जीवन नहीं छोड़ूंगी, तब कहीं जाके सफलता मिली। और कितने साल, 18 साल बाद। आप बिलीव करेंगे, मैं अपने ऑफिस से इतने लोगों को यहाँ लेके आती थी पकड़ पकड़ के, बनता था 6 का प्रोग्राम आता था एक, उन दिनों बहुत मुश्किल होता था लेके आना। तो राम श्लोक भाई देखते थे अकोमोडेशन उन दिनों, तो उन्होंने नाम रखा हुआ था कि तुम दिल्ली जाती हो या अजमेर से वापिस आ जाती हो, ऐसे हंसते थे वो लोग, कहते तुम अभी गई थी फिर वापिस आ गई, अभी गई थी, मतलब बाबा और सेवा, और जो भी मेरा लगे वो बाबा के यज्ञ में लगे। तो जब हमने ये सोच के प्रतिज्ञा करके हम चले, तो आज हम लोगों को देखो 50 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, लेकिन वही उमंग उत्साह और बल्कि उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है कि अगर हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, ओम शांति।